ओम शांति। सभी ये तो अनुभव करते ही हो कि हमारी ये ब्राह्मण जीवन कितनी महान जीवन है। जब से हम सब बाबा के बच्चे बने हैं, हर पल कमाई ही कमाई है, कदम कदम में पद्मों की कमाई कर रहे हैं। ऐसी पद्मा पद्म भाग्यशाली आत्माएं जिनको यह अलौकिक जन्म मिला, स्वयं बाबा की नज़र कहाँ कहाँ किस किस कोने में पड़ी, बाबा ने ढूंढ करके अपने बच्चों को निकाल लिया। कितनी श्रेष्ठ भाग्य की बात है, कितनी खुश नसीबी है जो भगवान की छत्र छाया के नीचे हम सब पहुंच गए। नशा तो होगा ही, खुशी होती है। बाबा के बच्चों के दो गीत हैं, दिल के गीत हैं। ब्रह्मा बाबा भी वही गीत गाते रहे, पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा। किसके दिल से बात निकलती है? हाथ तो उठाओ देखें तो, निकलता है सच्ची है? पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा। परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले ईश्वर की, वो मिल गया, बाकी क्या चाहिए। वाह मेरा भाग्य, वाह भाग्य विधाता बाबा, वाह ड्रामा की ये सीन। कितना भटक रहे थे, दर दर धक्के खा रहे थे, भक्ति की तीर्थ की गुरु की कहाँ कहाँ गए, आखिर उसने हमें ढूंढ लिया, भक्ति का फल दे दिया। इससे बड़ा भाग्य और क्या होगा। कभी अपनी अखुट प्राप्तियों का चिंतन करते हो, क्या क्या मुझे मिला है? कई बार चलते चलते वो नशा, वो खुशी, वो उमंग जो रहना चाहिए ढीला पड़ जाता है। बाबा कई बार कहते हैं ना, पुरसार चलते चलते ठहरती कला वाला हो जाता है। कभी ठहरती कला होती है तो कभी उतरती कला, गिरती कला भी हो जाती है। अभी ऐसा नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण जीवन में जब बाबा ने इतना सब प्राप्ति कराई है, उन प्राप्तियों का कम से कम चिंतन करो, अंदर अंदर याद करो, बाबा आपसे मुझे क्या क्या मिला है। नशा चढ़ेगा, उमंग आएगा, उत्साह आ जाएगा। बाबा हमें संगम ऊपर दाता, विधाता और वरदाता के रूप में सब कुछ दे रहा है, दिया है। तीन स्वरूपों से हम सबकी पालना कर रहा है। आज भी बाबा ने कहा ना, तीन स्वरूपों से, बाप रूप से इतना वर्षा दिया है, शिक्षक रूप से एक एक बच्चे को त्रिकालदर्शी बना दिया, नॉलेज फुल बना दिया, और सतगुरु के रूप से वरदानों से श्रेष्ठ मत से भरपूर कर दिया। तो बाबा की इतनी ऊंची श्रेष्ठ पालना के नीचे हम सब पल रहे हैं और उस स्मृति में रहते हैं, तो संगम का समय, श्वास, संकल्प और संपत्ति, हर एक के पास ये चार खजाने तो हैं अपने ही। संगम का समय बड़ा अमूल्य है, और जिस बच्चे ने इस समय को समझा, पूरे कल्प की कमाई का बीज बोने का समय है। केवल 21 जन्मों की नहीं, 84 जन्मों की गारंटी है। अगर कोई ने संगम पर अपना सब कुछ सफल किया है, निस्वार्थ भाव से सफल किया है, बाबा को पहचान करके सफल किया है, तो बाबा उसकी गारंटी ले लेता है। बच्चे 21 जन्म तो तुम माला माल रहोगे ही, लेकिन द्वापर और कलयुग में भी कभी कोई कमी नहीं पड़ेगी, संपन्नता रहेगी, भरपूरता रहेगी। तो ये संगम का बहुत अमूल्य समय है, इसमें जरा भी इधर उधर की बातों में, व्यर्थ में इस समय को नष्ट नहीं करना। बहुत बड़ी शक्ति है संगम की, समूल्य समय की, एक एक घड़ी अनमोल है। कई बार हम लोग आपस में बैठ गए, बातें करना शुरू किया, शुरुआत करते हैं स्वउन्नति से, स्वचिंतन से, और हो जाता है परचिंतन। इधर से उधर बात फैलते फैलते, निकलते निकलते पता नहीं, चेक करो तो कहाँ से शुरू किया और कहाँ पहुँच गए, कितना समय हमारा ऐसे ही चला जाता। इसलिए मेरा तो पर्सनल इस बात पर बहुत अटेंशन रहता है कि इधर उधर की बातों में यहाँ बैठे वहाँ बैठे परचिंतन किया, इधर उधर की बातें किया, कुछ हंसी मजाक किया, ऐसे ही ये समय न चला जाए। ये बहुत अमूल्य समय है, हम सबको इस पर बहुत अंडरलाइन करना चाहिए। अगर कोई स्थूल सेवाएं नहीं हैं तो बाबा कहता अरे इतना बड़ा विश्व परिवर्तन का कार्य आप बच्चों पर मैंने दिया है, जवाबदारी दी है, अपनी शुद्ध वृत्तियों से, शुद्ध भावनाओं से, श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति से प्रकृति को, इस विश्व को परिवर्तन करने के लिए शुभ भावना का दान दो, योग का सहयोग दो, मनसा सेवा करो। मनसा सेवा से आपकी मनसा शक्तिशाली बन जाएगी, मन एकाग्र हो जाएगा, भटकना बंद कर देगा। वाचा सेवा से वाणी सिद्धि को प्राप्त कर लेगी, जो बोलोगे होने लगेगा, और आपके दो बोल सुनने के लिए लोग लालायित हो जाएंगे, कुछ तो मेरे लिए बोलो, आज हम अपनी दादियों से दो बोल सुनना चाहते, यही आस रही अंत तक, दादी कोई दो शब्द बोल दे, बाबा कोई दो वरदानी बोल मेरे लिए कह दे। तो उन्होंने अपनी संकल्प की शक्ति को, अपने बोल की शक्ति को, अपने कर्म की शक्ति को बचाया, व्यर्थ नहीं जाने दिया। हर एक ब्राह्मण बच्चे को इस समय विशेष अंडरलाइन करना चाहिए कि हमारी ये समय की शक्ति अगर बच गई तो संकल्प, भूल, संबंध, संपर्क सब बच जाएगा, व्यर्थ से बच जाएंगे। संकल्प एक बहुत बड़ी शक्ति है, इस पर थोड़ा विचार करना। कहते हैं परमात्मा ने संकल्प से सृष्टि की रचना कर दी, ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची, ये सृष्टि भी शायद ब्रह्मा के संकल्प की है, दादियों के संकल्प की है, जो आज आप सब इस स्थान पर पहुँचे हैं, उनकी शुभ भावनाओं से ये स्थान का निर्माण हुआ, और इतनी आत्माएं यहाँ आकर के कितने सुंदर सुंदर अनुभव कर रही हैं। तो संकल्प की एक बहुत बड़ी शक्ति है, इसको हम पहचाने। ऐसे नहीं जो आया सोच रहे हैं, जो आया चिंतन चल रहा है, जो बात मेरे काम की नहीं है, देखा सुना कोई ने बोल दिया सुना दिया और उस पर चिंतन चलने लगा। कईयों के अंदर अभी तक भी व्यर्थ सोचने की बहुत आदत है, बाबा कहते हैं बीमारी है, सोचते रहते, संकल्प चलाते रहते, लेना देना कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं, लेकिन चलना शुरू हो गया, बस कंट्रोल करना ही मुश्किल हो जाता, रुकता ही नहीं है। इस पर थोड़ा अंडरलाइन करना सभी, संकल्प बहुत बड़ी शक्ति है। वो संकल्प उठे जो सिद्ध होने वाला हो, इतना अपने संकल्पों पर मुझ आत्मा का कंट्रोल आ जाए, ये रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर योग से ही आती है। तो अगर ये कंट्रोलिंग पावर आ गई, जो चाहें जितना चाहें संकल्प उतने ही चलें, उतना वही सोचें, और जब चाहें स्टॉप कर लें, ये हमारे कंट्रोल में होना चाहिए, नियंत्रण में हो, तब तो कहेंगे राजा हैं, राजयोगी हैं, नहीं तो हम प्रजा योगी हो गए अगर हम अपनी कर्मचारियों को ही अपने कंट्रोल में नहीं कर पाते। तो ध्यान देना, राज दरबार लगाना, भाग्य का चिंतन करना और चेक करना जरूरी है, हर एक को करना है, ऐसा नहीं मैं करूँ आप करो, सबको करना चाहिए कि मेरी ये शक्तियाँ संकल्प की, श्वास की, समय की, और जो इतना खजाना मिला है आज मेरा जो चिंतन चला है बताता हूँ मैं, सफल करो इन खजानों को। सबसे बड़ा खजाना मिला है ज्ञान का, और ऐसा नया ज्ञान और इतना सहज शब्दों में बाबा ने मुझे, हम सब बच्चों को मास्टर ज्ञान सागर बना दिया, नॉलेज फुल बना दिया, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, त्रिलोकीनाथ बना दिया। क्या ज्ञान दिया? आप कौन हो, आप कहाँ से आए हो, आप यहाँ क्यों आए हो, किस लिए आए हो, इतना स्पष्ट ज्ञान दिया। अब ज्ञान है सबके पास, और ज्ञान का वर्णन भी सब करते हैं, सुनते हैं, दूसरों को सुनाते हैं, लेकिन ये जीवन ज्ञानी तो आत्मा की बन जाए। ज्ञानी तो आत्मा, ज्ञान स्वरूप आत्मा है, सिर्फ दूसरों को सुनाने तक नहीं। जो दूसरों को हम सुनाते हैं, पहले हम अपने को पढ़ाते हैं। अगर हम नहीं पढ़ा रहे हैं अपने को और दूसरों को सुना रहे हैं, तो जब मेरे सामने कोई ऐसी बात आएगी तो ज्ञान भूल जाएगा, समय पर याद नहीं आएगा। ज्ञान एक अस्त्र शस्त्र है और उस समय पर काम आना चाहिए। इतना शस्त्रों से बाबा ने हम सबको सजाया है, देखो देवियों के हाथ में कितने शस्त्र दिखा दिए, उन्होंने स्थूल दिखाए, लेकिन बाबा ने हमें दिए ज्ञान और योग के अस्त्र शस्त्र। किसी भी रूप में आसुरी शक्तियाँ आपके ऊपर वार करें, जिसके पास ये अस्त्र शस्त्र हैं वो पास हो जाएंगे, विजयी हो जाएंगे, और नहीं कहीं ना कहीं हार खा लेंगे। तो हम सब बाबा के बच्चे ज्ञान स्वरूप, ज्ञानी तु आत्मा बन करके ज्ञान को अपने स्वरूप में लाएं। ज्ञान माना, ज्ञान माना समझ। समझदार कहते हैं सोचना, बोलना, करना, उसके पहले भी सोचना, सोचने के पहले भी सोचना, सोचने के बिना बोलना नहीं, करना नहीं। कर लिया, बोल दिया, निकल गया और फिर कहते मैंने सोचा तो नहीं था, हो गया, क्या करूं, वो परवश स्थिति, उसको ज्ञानी नहीं कहते। ज्ञानी आत्मा जो बोलती है, जो करती है, जो देखती सुनती है, उसमें बहुत सोचती है, समझती है। तो हम सबको बाबा ने ज्ञानी तु आत्मा बनाया, समझदार बनाया है। इसलिए कोई भी कर्म ऐसे नहीं हो सकते हैं जो पश्चाताप करना पड़े। इतना टेंशन देना, ज्ञानी तु आत्मा की निशानी है। अगर ज्ञान का खजाना मेरे पास है तो इसी जीवन में मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव होना चाहिए। भविष्य में मुक्ति मिलेगी, जीवन मुक्ति मिलेगी, उसकी लालसा क्यों रखें। संगम पर अगर बाबा का ज्ञान मेरे जीवन में है तो सब चेक करना, मैं मुक्त हूँ या कहीं बंधा हुआ हूँ, कोई रस्सियाँ अपनी तरफ खींच रही हैं, लगाव की, झुकाव की, प्रभाव की। कहीं पर भी कोई बंधन मुझे आत्मा को बांधे नहीं, स्वतंत्र। बहुत समय से बंधते आए, किसने में बंधे, देह में बंधे, देह के संबंधों में बंधे, वस्तुओं में, पदार्थों में बंध गए और संस्कारों में बंध गए। हर एक आत्मा बंधी हुई है और वो बंधन के कारण वो दुखी है। दुख का और कोई कारण नहीं है, बंधन ही दुख देता है। जो स्वतंत्र है वो बंधन मुक्त है, इसलिए बंधन मुक्त आत्मा सदा सुखी है। तो ज्ञान का खजाना जिसके पास है, जिसने ज्ञान को स्वरूप में लाया है, उसकी ये निशानी दिखाई देगी, कोई भी बंधन उस आत्मा को बांध नहीं सकता, वो मुक्त है। जीवन में रहते वो जीवन मुक्त है। तो सभी चेक करना, अपने आप से पूछना, क्या सचमुच मैं मुक्त होकर के अपने संकल्प, श्वास, समय, संपत्ति सब कुछ सफल कर रहा हूँ, या कहीं व्यर्थ जा रही। बंधन ही व्यर्थ कराता है। जहाँ बंधन होता है वहाँ ही सब बातों की लेन देन शुरू हो जाती है, करना पड़ता है। जब स्वतंत्र हैं, मुक्त हैं, तो कहीं पर भी कोई हिसाब किताब बनेगा नहीं। योग की सब्जेक्ट में योग का खजाना बाबा ने एक एक बच्चे को दिया, इतना सिखाता है। रोज़ मुरली के अंदर कितनी बार कहता, बच्चे तुम मुझे याद करो, मुझे याद करो, मुझे याद करो, तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे, तुम पावन बन जाओगे। अगर ये खजाना जिसके पास है वो शक्तिशाली स्थिति में रहेगा, वो स्वराज्य अधिकारी भी होगा और शक्तिशाली होगा। छोटी छोटी बातों में मूड खराब नहीं होगा, हलचल नहीं होगी, क्यों क्या के प्रश्न नहीं उठेंगे। क्यों? क्योंकि साथी मेरा सर्वशक्तिमान बाप है। योग माना क्या? हम उसके साथ रहते हैं, उससे हमारा कनेक्शन है, उससे हम सब शक्तियाँ प्राप्त करते रहते हैं, उसकी छत्र छाया के नीचे रहते हैं। कोई सेक आ ही नहीं सकता, कितना भी दुनिया के अंदर सब प्रकार की आग लग जाए, लेकिन बाबा के बच्चे जो बाबा की याद में रहते हैं वो सुरक्षित हैं। ये सुरक्षा का कवच बन जाती है। तो याद का, योग का खजाना अगर हमारे पास है तो सर्वशक्तियों से आत्मा संपन्न है, भरपूर है, शक्तिशाली है। और धारणा के अगर सब्जेक्ट में हमारा ध्यान है तो धारणाएं हमें सब दिव्य गुणों से संपन्न बना देती हैं। देवताएं सर्वगुण संपन्न गाए हुए हैं, लेकिन बने कब? बने तो संगम पर ना, इस समय बने हैं तब तो उनका भविष्य इतना ऊंचा गाया हुआ है। तो हम सब अगर धारणाओं पर ध्यान दे रहे हैं तो जरूर चेक करें क्या हमारे पास गुणों का खजाना है। हर इंद्रिय से गुण दिखाई देते हैं हमारे जीवन में, सरलता, मधुरता, नम्रता, दिव्यता, अलौकिकता, ये गुण आए हैं। या ऐसे ही हम कह रहे हैं हाँ हम देवता बन जाएंगे, देवता बनने के लिए तो दिव्य गुण चाहिए ना, बिना दिव्य गुण के देवता बन जाएंगे क्या? तो धारणा की सब्जेक्ट पर अगर अटेंशन है तो आत्मा दिव्य गुणों के खजाने से भरपूर है। और अगर सेवा पर ध्यान है, सेवा में सदा लगे रहते, तो थोड़ी भी सेवा कोई करता है, बाबा के कार्य में, यज्ञ में सहयोग देता है, चाहे जिस रूप में देता है, उसके पास कौन सा खजाना जमा हो जाता है? खुशी का खजाना। खुशी का खजाना, इतनी खुशी होती है, हमारे सेंटर्स पर बूढ़ी बूढ़ी माताएं आती हैं, बुजुर्ग हैं, घरों में कुछ काम नहीं करती, सेंटर पर आके कहती हैं, दीदी मैं बर्तन मांज दूँ, मैं झाड़ू लगा दूँ, मैं सफाई कर दूँ। घर में नौकर करते हैं और वो सेंटर पर आकर के खुद सेवा करके जाती हैं। उनको बड़ी खुशी होती है, उनको ऐसे लगता है भगवान के घर में मेरा कुछ तो सहयोग लगा, कुछ तो कर्म किया मैंने, भागी बन जाता, खुशी मिल जाती। तो सेवा की सब्जेक्ट में अगर कोई ने तन से, मन से, धन से किया है तो उसका भाग्य बन जाता है, वो खुश नसीब अनुभव करता है, उसको खुशी की अंदर से प्राप्ति होती है। और संबंध संपर्क में जब हम आते हैं, इतना बड़ा हमें परिवार बाबा ने दिया है, तो कौन सा खजाना मिलता है? अगर संबंध संपर्क में हम समय पर एक दूसरे को मदद करते हैं, साथ देते हैं, सहयोग देते हैं, तो दुआएं मिलती हैं। हम सबको एक अटेंशन देना है, अंडरलाइन करना है, अगर मुझ आत्मा को सबकी दुआएं मिल रही हैं, हर कार्य में सफलता मिलेगी, सफल जीवन का अनुभव होगा। नहीं तो बददुआएं बहुत नुकसान करती हैं, योग लगने नहीं देती, खुशी का अनुभव होने नहीं देती, हल्केपन का अनुभव होने नहीं देती, अचानक बैठे बैठे इतनी अच्छी जीवन एकदम नीरस अनुभव होने लगती, कोई रस ही नहीं। क्यों? अचानक ऐसा क्या हो गया? अभी अभी देखो तो एकदम उड़ रहे हैं उमंग उत्साह में, और अभी अभी देखो तो एकदम डल हो गए। कारण तो कुछ होगा, वो कारण है बददुआएं। हम सब बाबा के बच्चों को अभी संगम पर अंडरलाइन करनी है, एक तरफ परमात्म दुआएं मुझे मिलें, बाबा की दुआएं मिलेंगी तो सबकी मिल जाएंगी, उनकी श्रीमत पर चल करके, उनके आज्ञाकारी बन करके, सपूत बच्चे बन करके हम परमात्म दुआएं लेते चले। ले लो दुआएं माँ बाप की तो सिर से उतर जाएगी गठरी पाप की, योग लगाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन ध्यान देना, बाबा की दुआएं मुझे मिलती रहे, मैं इतना सपूत बच्चा जैसा बाबा चाहता है, बाबा का कहना और मेरा करना, माना दुआएं ले लेना, देखो करके। बाबा कहता बच्चे अमृत वेले उठ करके मुझे बाबा से प्यार से गुड मॉर्निंग करो। अब गुड मॉर्निंग करना ही सीख जाओ, आज्ञाकारी बन जाओ, बैठो बाबा से दुआएं मिलने लगेंगी। बाबा की याद में रह करके कोई भी कर्म करो, दुआएं मिल जाएंगी। और जब हम अपने परिवार में हैं, जिनसे भी हमारा संबंध संपर्क है, जिनके हम समीप आते हैं रहते हैं, अभी हर एक को एक लक्ष्य रखना चाहिए, कोई भी आत्मा अपसेट ना हो मेरे से। मैं बहुत ध्यान देता हूँ इस बात का, साथी हैं, सहयोगी हैं, सेवाधारी हैं, कभी भी मेरे मुख से ऐसे शब्द न निकल जाएं जो डिस्टर्ब हो जाए, कुछ भी ऐसा न करें जो सात्मा के अंदर से आह निकले, दुख निकले। इसलिए सब बाबा के बच्चों को इस समय ध्यान देना है कि दुआओं का खजाना बहुत बहुत जरूरी है। ये बहुत सारी परिस्थितियां जो बाबा कहता है, अंतिम समय में जो बहुत पेपर आने वाले हैं, अति में जाएगा ना सब कुछ, उस सभी पेपर्स में पास होने की सहज युक्ति है। कोई मेहनत कोई होती है कोई नहीं होती है। बाबा कहता है गुणों को धारण करने की भी मेहनत नहीं करो, योग की भी मेहनत नहीं करो, लेकिन कम से कम दुआएं तो ले लो। अगर दुआएं मुझे मिली हैं, मिल रही हैं, मैं दुआ दे रहा हूँ, दुआ ले रहा हूँ। पता कैसे मिलती दुआएं? है तो समय पर साथ देने से दुआएं मिलती हैं, समय पर कोई को सहयोग देने से दुआएं मिल जाती हैं। हमारे इस यज्ञ में भी जिन्होंने समय पर कुछ किया है, उनको बाबा की परिवार की इतनी दुआएं मिली हैं, भले वो धारणाओं में नहीं हैं, भले वो पवित्र जीवन भी नहीं जी रहे हैं, लेकिन समय पर भगवान के कार्य में जिन्होंने मदद कर दी है, सहयोग दिया है, परमात्म दुआएं जिन्होंने ले ली हैं, वो आज कहीं भी संसार के कोने में रहते हैं, वो मालामाल हैं, दुआओं से साहूकार बने हुए हैं, कमी नहीं पड़ी उनके पास। और ऐसा समय था जब जरूरत थी, बेगरी पार्ट के समय जिन बच्चों ने बाबा की यज्ञ में थोड़ा सा भी सहयोग दे दिया, आवश्यकता के समय मदद की, भले उसके बाद वो ज्ञान में नहीं चल पाए, धारणाएं नहीं कर पाए, लेकिन आज 500 रुपया भी अगर उस समय बेगरी पार्ट में किसी ने सहयोग दिया, क्या भगवान पर राजी हो गया, खुश हो गया, भरपूर कर दिया। जितने भी विदेश के सेंटर्स, अधिकतर ऐसे बाबा के बच्चे हैं जिनके सहयोग से इतना बड़ा यज्ञ, इतने सेंटर्स खुले हुए हैं। दुआएं बहुत मदद करती हैं, अनुभव करके देखना। हमारी दादियों ने जो शरीर के पेपर को क्रॉस किया बहुत इजी रूप में, पेपर तो आए सबके सामने, लेकिन कभी भी लास्ट तक भी दादी जानकी का एक शब्द मुझे याद आता है। हम पूछते थे दादी आपको इतना बड़ा, मतलब बड़ा शरीर है, कुछ ना कुछ चोट लग जाती, कभी कुछ हो जाता है, तकलीफ नहीं होती? तो कहती थी दर्द तो होती है लेकिन दुख नहीं होता। आप समझ सकते हो क्या स्थिति होगी, दुख नहीं है क्योंकि हिसाब किताब है, जानते हैं पुराने शरीर हैं, कुछ तो होगा ही। बड़ी दादी क्या कहती थी, जब भी बात करो, कभी भी उनके पास, कुमार का दादी, प्रकाशमय दादी के पास हम जाते थे, मुझे तो सबकी दुआएं चला रही हैं, कोई दर्द नहीं, कोई तकलीफ नहीं, इतनी निश्चिंत स्थिति से बोलती थी जैसे उनके चेहरे पर कोई एक चिन्ह नहीं दिखाई दिया, ये बीमार हैं, इनको कोई तकलीफ है, दुआएं। और इन बड़ों ने सबकी दुआएं ली, उनके दिल को जीता, सहयोग दिया, साथ दिया, मदद की, उनके दिल से निकलता है। आज जितने मधुबन वाले हैं, चाहे वो यहाँ समर्पित हैं, कैसी भी बात उनके सामने आई होगी, उनकी दुआएं, बड़ों की दुआएं उनको मिली, और उनको सब ने दुआएं दी हैं, तब इतनी शारीरिक परिस्थिति को, पेपर को उन्होंने बड़ी सहज पार कर लिया। किसी भी प्रकार का पेपर, केवल शरीर का पेपर नहीं, लेकिन अगर मान लो आर्थिक रूप का भी पेपर आ जाए, संबंधों में भी पेपर आ जाए, अगर आपने यज्ञ में बाबा के बच्चों के साथ दिया है, सहयोग लिया है, दिया है, तो समय पर उनका सहयोग मिल जाता है। वो दुआएं बहुत मदद कर देती हैं, बड़े बड़े विघ्न सहज खत्म हो जाते हैं। ध्यान देना, दुआएं देने का एक बड़ा सादा और सरल टोटका सुनाता हूं मैं आपको। किसी को सिर्फ शिक्षा नहीं दो, शिक्षा देने से कोई सुधरते नहीं है, लेकिन क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, क्षमा ले लो, सबकी दुआएं मिल जाएंगी। क्योंकि अगर आपके सामने कोई ऐसे आते हैं, कोई गलती करके आया, कोई बात हो गई और आपने उसको क्षमा कर दिया, तो क्षमा करना ही उसके लिए शिक्षा हो जाएगी, आगे के लिए सुधर जाएगा। और आपने लाव उठा लिया, डंडा उठा लिया, उसको सजा दे दी, तो सुधरने की बजाय वो बिगड़ जाएगा। दादियों ने इसी विधि से किसी को शिक्षा नहीं दी, उनको क्षमा कर दिया, इसलिए उसके अंदर परिवर्तन आ गया, उसके दिल की दुआएं निकल गई बड़ों के लिए। देखो हमने तो इतना किया, लेकिन इन बड़ों ने मुझे कोई भी बात की शिक्षा नहीं दी, लेकिन क्षमा कर दिया। तो बाबा कहता है बच्चे, अपने परिवार में भी कोई ऐसे नीचे ऊपर कर देते हैं, हो जाता है, क्षमा करो। बड़े देवी देवताएं, पूज्य पूर्वज आत्माएं क्षमा करती हैं। और अगर कुछ नीचे ऊपर हमसे हो गया, तो इतना देहमान न हो जो हम उसको सिद्ध करने लगे, नहीं मैं तो राइट हूँ, क्षमा ले लो। उसी समय वो बात खत्म हो जाएगी, सॉरी कहने से कोई भी प्रकार से नुकसान नहीं है। इसलिए हम सबको संतुष्ट रहना है, संतुष्ट करना है, ये भी बहुत बड़ा खजाना है। और इस खजानों की प्राप्ति से, जिसके पास ये खजाना है, संतुष्टता का, प्रसन्नता का, भरपूरता का, क्योंकि जो तृप्त है वही तो संतुष्ट रहेगा, खाली है अगर तो संतुष्टता कहाँ से रह सकती है। ज्ञान चिंतन करो, गुणों का दान करो, सबको देते चलो, आप भरपूर हो जाएंगे। भरपूर होने की बड़ी अच्छी विधि बाबा ने बताई है, और आज जो यज्ञ भरपूर है उसका एक कारण बताया है, देने से बढ़ा है, लेने से नहीं, मांगने से नहीं, दिया है सबको जो सहयोग चाहिए, जिस प्रकार का सहयोग चाहिए, बड़ों ने सबको दिया है, और देने के कारण सबका सहयोग मिल गया है, भर गया है। हम सभी भी इन विधियों को सीख जाएं, हमारे पास सब खजाने जमा हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। इसलिए बहुत टेंशन देना कि कोई भी खजाना अभी समय अनुसार व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। अगर ये चार वरदान जो बाबा के हैं हमारे जीवन में आ जाएं, वैसे तो देवी देवताओं के पास हैं, संगमयुगी ब्राह्मणों के लिए कभी कभी अतिशयोक्ति लगता है कि बोले या न बोले, लेकिन वो चारों वरदान संगमयुगी आत्माओं ने अगर अनुभव कर लिया तो भविष्य में देवताओं के पास तो हैं ही हैं। सबसे पहले है हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य। बाबा तो बच्चों को अपने हर बच्चे को कहता है सदा हेल्दी भव। जितना तुम बाबा की याद में रहोगे तन भी स्वस्थ रहेगा। ज़्यादा आसक्तियाँ ही तन को बेकार करती हैं, ये खाऊं ये खाऊं ये खाऊं, शरीर कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर देता है। इसलिए बाबा ने अपने बच्चों को संगम युग पर अगर कोई पुराना हिसाब किताब आ जाता है उसको इतना सरल रीति से, हल्के रीति से चुकतो कर लो जैसे कुछ नहीं है, लेकिन वर्तमान समय अटेंशन देना, कोई हवा पानी के परिवर्तन से, खाने पाने के कारण स्वास्थ्य बिगड़े नहीं। जितना खाना है, जो जरूरी है, आवश्यक है, उतना ही स्वीकार करो, कहीं इधर उधर जबान न चले, स्वस्थ रहोगे। तो संगम युग पर, क्योंकि शरीर स्वस्थ है तो आत्मा भी स्वस्थ है, कुछ कर सकती है, कार्य कर सकती है। इसलिए हर एक ब्राह्मण आत्मा को बाबा से स्वास्थ्य का वरदान लेना चाहिए, मैं सदा स्वस्थ रहूं। तन को जितना खिलाना है, जितना सुलाना है, जितनी एक्सरसाइज है वो करनी चाहिए, अलबेले नहीं रहो। अगर लेट गए, मान लो थोड़ा सा बुखार आया, थोड़ी सी तबीयत नीचे ऊपर हो गई, सो गए जा करके, बुजुर्ग हो गए, बड़े हो गए, अरे मैं तो अभी बड़ी आयु वाला हूँ, मैं क्या करूँ, सोए रहेंगे तो सोए ही रह जाएंगे। इसलिए बहुत ध्यान देना, कुछ भी हो, कितनी भी बड़ी आयु हो जाए, सदा एक्यूरेट और अलर्ट रहो। बाबा कराने वाला करा रहा है। दादी जानकी जी ने 105 साल की, 104 साल की उम्र तक कितनी सेवाएं की होंगी। अभी यहाँ है, अभी वहाँ है, शरीर साथ नहीं दे रहा है, लेकिन आत्मा इतनी शक्तिशाली है, जो तन बीमार होते भी बीमारी का अनुभव नहीं हुआ। सवेरे सोई हैं, 10-11 बजे तक ट्रिप चढ़ी हुई है और शाम को क्लास करा रही है। शाम को कहीं कहीं उड़ करके जा रही हैं, विदेश में, देश में, लास्ट तक भी सेवाएँ नहीं छोड़ी उन्होंने। कभी नहीं कहा मैं बूढ़ी हूँ, एकदम उमंग उत्साह के पंख लगे हुए थे। तो ध्यान देना, पहला वरदान संगम पर हरेक ब्राह्मण को लेना है। अपने आप को इतना इजी रखो, इतना सहज रीति से चलो, जितना जरूरी है उतना ही इसको भोजन मिले, उतनी ही नींद मिले और उतना ही एक्सरसाइज, ये शरीर स्वस्थ रहे। दूसरा वरदान है हेल्थ के साथ वेल्थ। बाबा ने अपने हर बच्चे को, चाहे वो गरीब से गरीब हो, उसको साहूकार बनाया है। स्थूल में भी उसके पास कोई कमी नहीं है। क्यों? लोग समझते हैं यहाँ सब साहूकार ही आते हैं, लेकिन अनुभव ये कहता है यहाँ सबसे अधिक गरीब ही आते हैं, और वो गरीब साहूकार बन जाते हैं, क्योंकि उनका सब वेस्टेज बच जाता है। वो शराब नहीं पीता, सिगरेट नहीं पीता, देखा देखी नहीं करता, शादी ब्याह में उड़ाता नहीं है, बहुत वैलेंस से अपनी कमाई को सेट करके चलाता है। जितना जहाँ खर्चा करना उतना ही करता है, बाकी सब बचत कर लेता है, आराम से रहता है, परिवार को आराम से चलाता है। इसलिए लोगों को लगता है तो साहूकार बन गए, ये तो साहूकार ही आते हैं, लेकिन बाबा ने अपने बच्चों की बचत करवाई है। जो व्यर्थ जा रहा था, वेस्टेज थी, उसको रोका है, रोक दिया, नहीं ये नहीं करना, ये नहीं करना, किसी से देखा देखी नहीं करना, किसी से भेंट नहीं करो, ये ऐसे करा मैं भी कर दूं। कई लोग अपने बच्चों की शादी में उड़ाते हैं लाखों रुपया, उसने ऐसा किया ना मुझे भी करना पड़ेगा, किस लिए करना। बाबा ने कहा कम खर्च बाला नसीन, कम खर्चे में सब काम कर लो तो वेल्दी बन जाएंगे। और अविनाशी खजानों से संपन्न रहो, वो जो खजाना जिसके पास है, बाबा कहता वो धन तो धूल के समान है, अपने आप आ जाएगा, उसके पीछे भटकने की जरूरत नहीं है। ज्ञान का धन है, गुणों का धन है, चरित्र का धन है, उस धन से संपन्न बन करके रहो, अपने आप उस धन की जितनी आवश्यकता है आएगा। हबच नहीं, लालच नहीं, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। आजकल कई लोग धन के पीछे इतना लग गए हैं जो ज्ञान योग भूल गया है। क्या जरूरत है, किसके लिए चाहिए? ठीक है आराम की जिंदगी होनी चाहिए, लेकिन ज़्यादा टू मच में जाएंगे तो ना ज्ञान रहेगा, ना योग रहेगा, ना सेवा रहेगी, ना आपकी देह की स्थिति ठीक रहेगी। बहुत अटेंशन देना। हम सबको संगम ऊपर वेल्दी बनना है, धनवान बन करके रहना है, कोई के आगे हाथ फैलाना ना पड़े, ऐसे बैलेंस से चलना सीख जाओ, कर्जा लेना ना पड़े। कई बार बाबा कहता है कर्ज भी एक मर्ज है, क्यों कर्जा लें किसी से, बैलेंस से चलो। और तीसरा वरदान बाबा देता है हैप्पीनेस का, सदा खुश रहना। खुशी जैसी खुराक नहीं, खुशी जैसा खजाना नहीं। इतना बाबा ने हम सबको खुशी का खजाना दिया है, अच्छे अच्छे चिंतन में रहो, खुशी का दान करो, लोगों को खुश कर दो, आपके खजाना बढ़ जाएगा। मांगने से नहीं बढ़ता है, देने से बढ़ जाती है। ऐसे कोई सेवाएँ कर दो, ऐसा कुछ कार्य कर लो जो आत्मा एकदम आनंदित हो जाए, खुशी के अंदर झूमने लगे, तो एवर हैप्पी का भी वरदान बाबा से संगम पर हमें लेना है। और चौथा है बिल्कुल होली, पवित्र जीवन। तो जहाँ हेल्थ है, वेल्थ है, हैप्पीनेस है, होलीनेस, तो होली आत्माएं, पवित्र आत्माएं संगम युग पर जो बनी हैं, बाबा ने जैसा बनाया है हम सबको, ऐसी पवित्र जीवन, निर्मल जीवन, स्वच्छ जीवन, जिसके अंदर कोई भी दाग दिखाई न दे, तब कहेंगे सफल जीवन है, नहीं तो ब्राह्मण बन करके क्या किया? अभी भी वही दुनिया वाले दाग, वही संस्कार, वही स्वभाव, वही हेर फेरा, हेरिया फेरी का संस्कार, झूठ कपट छल चल रहा है, तो ब्राह्मण बन के क्या किया? अगर ब्राह्मण जीवन सफल जीवन है तो देखना चाहिए कि इस ब्राह्मण जीवन में कोई भी एक भी सूक्ष्म में भी दाग नहीं रहना चाहिए, विकारों का, बुराइयों का, तेरे मेरे का, कमी कमजोरी का। अभी हम सबको एक संकल्प लेना है, बाबा के घर में आए हो ना, संकल्प लेना कि मुझे बेदाग हीरा बनना है, वैल्यूबुल हीरा बनना है। ये जीवन बाबा ने हमारी हीरे तुल्य बनाई है, हीरे समान बनाई है, जरा भी इस हीरे में कोई दाग न रह जाए। बहुत सूक्ष्म चेकिंग करो, अपने आप से पूछो ऐसे एकांत में बैठ करके, क्लास से मुरली से तो समझ मिलती है, लेकिन महसूसता तो जब एकांत में बैठोगे तभी आएगी। और जब महसूस हो जाएगा कि हम पवित्र जीवन के लिए बाबा के बच्चे बने हैं, बाबा मुझे ऐसा बनाना चाहते हैं, कोई भी दाग इसमें नहीं रहना चाहिए। अगर हम सब बेदाग हीरा बन जाएं, बाबा का नाम अपने आप रोशन होने लगेगा। हीरे को कोई छिपा नहीं सकता, धूल भी नहीं, मिट्टी भी नहीं। अगर हीरे के ऊपर बाबा की ऐसे किरणें आएं तो चारों तरफ पूरे विश्व के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, सब गुण सब शक्तियाँ अपने आप चारों तरफ फैल जाएंगे। तो हम सब एक बहुत वैल्यूबल मूल्यवान सच्चे हीरे बन करके रहें, तब कहेंगे ये ब्राह्मण जीवन सफल जीवन है। अगर वैसे ही चल रहे हैं जो पहले संस्कार थे, ज्ञान के पहले भी थे और अभी भी वही हैं, और कई बार चलते चलते संग का रंग लगता है, वो संस्कार और कड़े हो जाते हैं। क्या जरूरत थी बाबा का बच्चा बन? हम बाबा के बच्चे बने हैं, बाबा ने चुना है, बाबा ने अपनी गोद में लिया है, तो कम से कम जैसा बाबा बनाना चाहता है ऐसा मैं बन के दिखाऊं। तो आप सभी आज के दिन संकल्प करना कि मैं आत्मा सदा हेल्दी वेल्दी हैप्पी और होली बन करके बेदाग हीरा बन जाऊं। तब कहेंगे हमारी ये सफल जीवन है, इतने सब खजाने बाबा ने दिए हैं, इतनी अखुट प्राप्तियां कराई हैं। मैं तो एक बार दादी जी ने मुझे कहा तुम एक बार लिस्ट निकालो क्या क्या प्राप्ति हुई है। मैंने एक लिस्ट बनाई थी बहुत दिन पहले, अमृत वेले से रात्रि तक बाबा ने इतना सब कुछ भरपूर किया है, कौन देगा इंसान। बाबा ने सब प्राप्तियां बच्चों को कराई है, सिर्फ उसका चिंतन करो, सुमिरन करो, उसकी स्मृति में रहो, बहुत नशा चढ़ता है और लगता है सचमुच ये जीवन सफल जीवन है, नहीं तो कहाँ निष्फल हो रहा था। समय जा रहा था, संकल्प जा रहे थे, श्वास जा रही थी, और ऐसे ही संपत्ति व्यर्थ जा रही थी। किसी की बैंक में पड़ी है, किसी की दीवालों में छिपी पड़ी है, और हमारा तो एक एक कणा दाना भगवान के काम में सफल हो रहा है। नई दुनिया बनाने में हम सफल कर रहे हैं, सतयुग के कार्य में लगा रहे हैं, तो हमको बाबा ने कितना संपत्तिवान बना दिया, सब प्रकार की संपत्ति दे दी। कभी कभी कोई कमी महसूस तो नहीं होती? कोई कमी हो तो बताना, किसी के पास कोई कमी हो तो बता सकते हो कि मेरे पास नहीं है। कारण है कि या तो व्यर्थ जा रही है, या तो उसको हम चिंतन सुमिरन करके उस नशे में नहीं रहते। बाबा देने वाला दाता तो खुले भंडार दे रहा है, और नंबर नहीं करता इसको इतना दूंगा इतना दूंगा, सबको समान रूप में देता है। जिसने उसको अपना बनाया, जिसने उसको सेवा में लगाया उसका बढ़ गया, और जिसने ऐसे ही रख दिया उसका या तो उतना ही रहा या तो खुद खत्म हो गया। तो हम सबको बढ़ाना सीखना है, जो कुछ मिला है उसको चिंतन करो, दूसरों को दान करो, अपने आप बढ़ जाएगा, और व्यर्थ को बचा लो। ठीक है, तो हमारी ये बहुत सफल योगी जीवन है, बहुत मौज की जीवन है। कभी भी ये नहीं कहना ये मूंझ गए, उलझन में आ गए, क्या करूं। बाबा को क्या क्यों कैसे कहने वाले बच्चे पसंद नहीं आते। हम खुश नसीब हैं, खुश नुमा हैं, खुश मिजाज हैं, इस नशे और खुशी में रहना। ओके, ओम शांति।